का था, रूह वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं शिवानी जी की लिखी कहानी गैंडा का चौथा एवं अंतिम भाग। पहले तीन भागों में आपने सुना सुपर्णा मेजर जनरल रोहिताश्व दत्ता की पत्नी है। सुपर्णा के बचपन की सहेली राज मेहरा काफ़ी आकर्षक है और आजकल उन्हीं के घर में रह रही है। मेजर रोहित दत्ता और राज मेहरा के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं और ये सुपर्णा को असहज बनाती हैं। सुपर्णा चाहती है कि राज मेहरा अपने पति वेद के साथ ट्रांसफ़र होने के साथ साथ ही चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और राज उनके ही घर में शिफ्ट हो जाती है। इधर सुपर्णा को उनकी नज़दीकियों के कई सबूत मिलते हैं और एक दिन ईर्ष्यावश वो इस समस्या का समाधान ढूंढने मस्जिद के पीछे वाले मौलवी साहब के पास पहुंच जाती है। सुनिए अब आगे। बेटी, तुम्हारी चीज़ मिल जाए तो अपनी इस छोटी बहन का भी ख्याल रखना, चलते चलते मौलवी साहब ने कहा। मैं आज तक न जाने कितनों के लिए खुदा से दुआ मांग चुका हूँ, उनकी खोई चीज़ें उन्हें लौटा चुका हूँ, पर अपनी फाल अब तक नहीं खोल पाया। असल में नमक से ही नमक नहीं खाया जाता बेटी, अपने लिए कुछ मांग नहीं सकता। औलाद के नाम पर बस एक यही लड़की है, इसका रिश्ता हो चुका है, तोला भर भी सोना कहीं से मिल जाए तो कपड़े तो खुद जुटा ही देगा इंशाअल्लाह। तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिलते देर नहीं लगेगी, जाओ, चोर अभी घर में ही है। वह तेज़ कदमों से बंगले की ओर एक प्रकार से दौड़ लगाकर ही भागी। राज प्रायः उसी समय होटल से घर आती थी। जल्दी जल्दी उसने अपने दरवाजे के बाहर ही धूप खोद कर वह काज का नन्हा चुरकुट गाड़ दिया और खिड़की के पास आने वालों की प्रतीक्षा में खड़ी हुई तो कलेजा ऐसा धड़क रहा था जैसे वह उसकी गर्दन कटखने नंगा गंडासा लिए खड़ी हो। कहीं ऐसा ना हो कि उससे पहले रोहित आ जाए, अपराधी तो वह भी था। पर वह आई, राज। उसने लक्ष्मण रेखा को लांघा और हंसकर उसे एक बड़ा सा ब्राउन टोंगा थमा दिया। बोली, आज बहुत बढ़िया प्रॉन बनी थी, तुझे मछली पसंद है ना, और रोहित को भी इसी से देने चली आई, खाना वहीं खा लिया था। रोहित नहीं आए क्या? उसकी व्याकुल दृष्टि में अनुपस्थित प्रणय के प्रति निर्लज्ज प्रेम की सहस्त्र तरंगे पछाड़ खा रही थी। एक क्षण पूर्व सुपर्णा के अपराधी चित्त का उपालम उन्हीं तरंगों में डूब गया। वह जान गई कि वह किसे प्रॉन खिलाने इस तपती दोपहरिया में इतनी दूर चली आई थी। उसी कृतज्ञता में पति को डुबो वह अपने कैसे प्रतिदान मांगेगी, यह भी उसे पता था। मुझे अपनी कार में होटल तक छोड़ दोगे ना रोहित? न जाने कितनी बार वह ऐसे ही लंच के बाद उसी की आंखों के सामने उसके मुंह के ग्रास को छीन, रोहित नहीं आया। सुपर्णा अपने कमरे में चली गई और राज बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। 4 बजे सुपर्णा नित्य एक प्याला चाय बनाकर पीती थी। वह उस दिन भी अपना प्याला लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी कि राज खड़ी हो गई। सु, चाय बनी है क्या? एक प्याला मुझे भी पिला दे, बदन न जाने कैसा टूट रहा है। सुपर्णा का प्याला कांप गया। सुबह का गंभीर स्वर किसी सुदूर देवालय में गूंज रही घंटा ध्वनि सा ही कानों में गूंज गया। लांघते ही चोर बेचैन हो जाएगा बेटी, उसने अपना प्याला उसे थमाकर कहा। ले तू पी ले, मैं दूसरा बना लूंगी। काश उस दिन कोई साक्षी देख लेता कि जो प्याला वह स्वयं अपने होठों से लगाने जा रही थी वही उसने सौत को थमाया था, विष का प्याला नहीं। कितनी सुंदर लग रही थी कमबख्त, कटे बाल अर्ध नग्न आकर्षक कंधों पर सधे गुच्छों में झूल रहे थे। पतली कमर में नीचे उतरी नीली शिफॉन की पारदर्शी नीलाब आभा में सफेद सपाट पेट निरभ्र उज्ज्वल आकाश सचमक रहा था। उस पर नन्ही घंटियों में टुनकती चांदी की पतली करधनी, चौथ की चंद्रिका सी रुपहली हसिया के आकार में मुड़ी कितनी आकर्षक लग रही थी। ना चाहने पर भी आंखें छीण कटी की उस किंकड़ी जाल में उलझ जाती और फिसलती चली जाती। गजब की रुचि थी उसकी। अपने प्रत्येक आकर्षक गढ़ टीले पर वह जानबूझकर ही ऐसी छोटी मोटी झंडियां गाड़ देती थी कि उसका अस्तित्व विपक्षी को शत्रु का अभिमान चूर करने की चुनौती में निरंतर ललकारता रहे। गले में लटका उसका अठनिया तांबे का ताबीज उस दिन भी दो उत्तंग चट्टानों के बीच बह रही किसी क्षीण पहाड़ी नदी की ताम्रवर्णी धारा के ही अनोखे तेज से चमक रहा था। कानों में थी कुंडलाकार चांदी की बालियां। उसकी सज्जा के प्रत्येक प्रसाधन की सांकेतिक शक्ति ऐसी प्रबल थी कि देखने वाले के मन में स्वयं रंग बिरंगी कल्पनाएं जग उठे। विवेकी से विवेकी पुरुष की नश्वरता, शौर्य, बल, सौष्ठव को वह अपनी अराल उंगलियों में पिस्सू सा मसल सकती थी। लगभग अनावृत उस सुडौल देह वृष्टि में भी कौशल से बरबस बंदी बनाए गए यौवन की विवश जकड़न निकट से देखने पर नहीं पहचानी जा सकती थी। मैं जा रही हूं सू, आज नहीं रहूंगी, उसने हाथ के तीक्ष्ण रंजित नखों को हवा में हिलाकर उससे विदा ली तो सुपर्णा ने भी हाथ हिला दिया। कैसी मूर्ख थी वो, पढ़ी लिखी होकर भी वह मौलवी की बातों का विश्वास कर गई। हो सकता है उसका बातूनी घाघ खानसामा ही मौलवी को जानता हो। राज और रोहित का प्रेम प्रसंग क्या किसी से छिपा था? ऐसे कीलकों से शत्रु कंटक दूर किए जा सकते तो लोग क्यों जानबूझकर किराए के हत्यारे बुलवाते? इसी उधेड़बुन में उसकी आंख लग गई। बच्चे स्कूल से लौटे तो वह उन्हें लेकर सिनेमा चली गई। थका मांदा रोहित लौटा तो वह व्याकुल सी दृष्टि से किसे ढूंढ रहा था वह समझ गई। प्रतिशोध की तीव्र दहन फिर उसके चित्त को दग्ध कर गई। दोनों के बीच इधर बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। जब से उसके प्रवंचक प्रतीक पति के उपहार का रहस्य पता चला था वह एकदम गुमसुम हो गई थी। रात को दोनों अगल बगल लेटते तो वह दीवार की ओर मुंह फेर लेती। उस दिन भी वह मुंह फेर कर लेट गई। रोहित ने उठकर बत्ती बुझा दी। थोड़ी ही देर में पति के परितृप्त खर्राटों का स्वर सुन उसकी आंखें अभिमान के अश्रुओं से ठलक उठीं। एक बार हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श भी तो नहीं किया उसने। पति की स्वस्थ शुद्धा कहाँ चली गई? सुपर्णा आओ, कह वह जिस आवेगपूर्ण आह्वान से इतने वर्षों में भी उसके हतरंती को झंकृत कर देता था वह स्वर कहाँ खो गया। अपनी आंखों के सामने ही वह प्रतिक्षण अपने सौभाग्य को भस्मीभूत होते देख रही थी और हृदय का वही मौन क्रंदन उसकी एक एक सांस को दहकता अंगार बना रहा था। 56 व्यंजनों का थाल सजाए वह जिसकी प्रतीक्षा में स्वयं भूखी बैठी रहती थी वह किस किस की जूठी पतलों की जूठन खाकर ऐसे परम परितृप्त में डूबा बेखबर सो रहा था। उसकी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि फोन की घंटी बजी। रोहित ने ही हड़बड़ाकर फोन उठाया। वह उदास मन से मुंह फेरे ऐसी लंबी लंबी सांसें लेने लगी जैसी गहरी नींद में बेखबर सो रही हो। हेलो हेलो, क्या कब खराब हुई? मैं अभी आ रहा हूँ। सुपर्णा, अपनी पीठ पर पड़ा पति का वह हाथ उसे चाबुक सा ही तिलमिला गया था। पूरे सप्ताह बाद पति के मुंह से सुने अपने नाम की खनक उसे बौरा गई। पर राज के होटल से फोन आया है सुपर्णा, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें शक है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। तुम चलोगी? सुपर्णा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। शिलाखंड सी वह उसी मुद्रा में पड़ी रही। रोहित की कार चली गई तो वह खिड़की से देर तक देखती रही। हुआ अब कुछ भी नहीं होगा अभागी को। उन विदेशियों के साथ खूब चढ़ा ली होगी, यही खुमारी होगी। पहले भी तो एक दो बार ऐसा हो चुका है। पर जब नौकरों की मदद से पति ने मूर्छिता राज को लाकर उसके पलंग पर लिटा दिया तब वो कांप गई। तुम लोग बाहर रहो, अभी एम्बुलेंस आ रही है। उसने सब नौकरों को बाहर भेज दिया। उनके जाते ही उसने अपराधनी सी कोने में खड़ी पत्नी के दोनों कंधे कसकर पकड़ लिए। सुपर्णा, नाउ टेल मी, सुपर्णा कहीं तुमने उसको तो नहीं कुछ खिला दिया? डॉक्टर के आने से पहले मुझे बता दो सुपर्णा, प्लीज प्लीज कन्फेस। सुपर्णा की आहत दृष्टि में अपने उस अविश्वासी सहचर के प्रति केवल घृणा थी, तिरस्कार। इडियट, उसने कहा, आज इसने यहाँ खाना भी नहीं खाया। प्रॉन लाई थी मैंने, उसे भी उठा के फेंक दिया। इसका बस चलता तो शायद यह वो मुझे ही खिला देती। ना, मैं इतनी नीच नहीं हूँ रोहित, यह एक प्याला चाय पीकर ही गई थी। चाय किसने बनाई थी? रोहित के स्वर का संदेह बड़ी नंगाई से उस आंखों के खून में उतर आया। मैंने। इस बार सुपर्णा की हंसी किसी फिल्म खलनायिका सी विभत्स लग उठी। तुम क्या सोच रहे हो, मैंने तुम्हारी प्राण वल्लभा को जहर दिया है? क्यों? तब जाओ शौक से इसकी शव परीक्षा करवा कर देख लो, मैं भी जान लूं कि कौन सा जहर दिया है मैंने, आर्सेनिक, साइनाइड, अफीम या। चुप करो, रोहित ने अपनी चौड़ी हथेली से उसके उत्तेजित स्वर का गला घोट दिया। पागल हो गई हो क्या? सब हरामखोर अर्दली दीवार से कान लगाए सुन रहे हैं। फिर वह सुपर्णा को वैसे ही छोड़ मूर्छिता प्रेयसी के सिरहाने खड़ा हो गया। राज, राज! आवेश और संभावित वियोग की आशंका ने उसके आधीर स्वर को सहसा रुआसा बना दिया। राज, राज! मृत्यु पथ की ओर तेजी से बढ़ रही प्रेमिका को उसका आर्त करुण स्वर जैसे हाथ पकड़कर पीछे खींच रहा था। राज! किंतु उस निर्विकार निष्प्राण चेहरे पर जीवन का अब कोई भी चिन्ह नहीं था, केवल ऊर्ध्वश्वास का एक तीव्र वेग प्रतिपल द्विगणित होकर तीव्र जलधार में डगमगाती तरुणी की विवशता से उसकी देह को कपा रहा था। जितनी बार वह कोने में खड़ी सुपर्णा की ओर देखता, उतनी ही बार उसकी आंखों में संदेह मिश्रित घृणा की लौ दप से जल उठती। डॉक्टर के आते ही राज के गले की घरघराहट थरथराते अधरों पर फिसल गई। डॉक्टर रोहित के क्लब का साथी था। इनके पति को खबर दे दी है आपने? उसने रोहित से पूछा। खबर दे ही नहीं पाए, पता नहीं कहाँ है, सुना था हांगकांग है, पर क्यों, क्या हालत इतनी खराब है डॉक्टर? हालत? डॉक्टर ने उसे आश्चर्य से देखा। देखा जाए तो इनकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी है, हो सकता है रात भर खींच लें, अस्पताल ले जाना बेकार है। है तो फूड पॉइजनिंग ही, मिस्टर पुरी तो कह रहे थे। रोहित बीच बीच में सुपर्णा की ओर देखता जा रहा था। वही खाना इनके चीनी अतिथियों ने भी खाया था, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अजय उन्हें क्या होगा, डॉक्टर ने कहा, सांप मेंढक केंचुआ पचाने वाले हाजमे को भला कुछ हो सकता है? पर हमारा भारतीय हाजमा आमतौर पर संस्कारी होता है, शायद ये इसी से नहीं पचा पाई। पौ फटने से कुछ पहले ही फिर राज के गले की घर घर अचानक बंद हो गई। उसके बाद के अध्याय सुपर्णा के जीवन के अविस्मरणीय अध्याय बनकर रह गए। गर्मी के दिन थे, बाहर तप्त लू के झोंके चल रहे थे। ऐसी गर्मी में मृत देह हिमखंड में दबाकर भी रख दी जाती तब भी शायद एक दिन से अधिक सुरक्षित नहीं रखी जा सकती थी। वेद से संपर्क किए जाने की रोहित की प्रत्येक चेष्टा विफल होती चली गई। हारकर उसी ने दाह संस्कार किया। एक ही दिन में रोहित का सुदर्शन चेहरा चिताग्नि से झुलसकर स्याह पड़ गया था। रात को सुपर्णा हृदय का समस्त उपालंब ताक पर धर खिड़की पर विक्षिप्त से खड़े पति का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे सर की सौगंध खाकर कहती हूँ रोहित, मैं निर्दोष हूँ। उसका हाथ एक झटके से झटक रोहित ने उसे ऐसे वेग से ढकेल दिया कि पलंग का पाया न थाम लेती तो शायद भरभराकर जमीन पर औंधी गिर जाती। दूसरे दिन रोहित ने अनेक मित्रों की सहायता से वेद का पता लगाया। हांगकांग से वह तीसरे दिन आ पाया और कार से उतरते ही मूर्छित होकर गिर गया। बच्चों को सुपर्णा पहले ही ननिहाल भेज चुकी थी, शायद वह स्वयं भी चली जाती, परंतु पति के व्यर्थ संदेह ने उसे रोक लिया था। उसके पलायन का कहीं वह शक्की व्यक्ति दूसरा अर्थ न लगा ले। वेद के आने के बाद वह चेष्टा करने पर भी अपना स्वगत भाषण रोक नहीं पा रही थी। बच्चों की नर्सरी में अब उसका एक छत्र राज था। जहां अवसर पाती वहीं किसी कुर्सी में कछुए सी मुंडी छिपाकर दुबक जाती और बड़बड़ाने लगती। मैं रोहित और दोनों बच्चों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने उस हरामजादी को कुछ नहीं खिलाया। पढ़ी लिखी होकर भी क्या मैं इतनी मूर्ख हूँ कि नजूमी ज्योतिषियों की बात का विश्वास करूँ? क्यों, है ना? ठीक है ना? ऐसा कभी हो सकता है? हो सकता है? फिर बुरी तरह हकलाती, अब पसीने से नहा उठी। वेद 2 दिन रहा और उन 2 दिनों में केवल औपचारिक हाँ ना के सुपर्णा और उसके बीच कोई बात नहीं हुई। चलने से कुछ पहले वह सुपर्णा से कहने लगा, उसकी सब चीज़ें गरीबों को बांट देना सुपर्णा, मैं कुछ नहीं ले जाऊँगा। खुरदरे गालों पर बह रहे उन आंसुओं में असली मोतियों की सी दमक थी। राज का यह वीतराग गेंडा उसका सब कुछ मुक्त हस्त से दान कर जाने लगा तो सुपर्णा ने ही जबरदस्ती उसकी जेब में राज के हीरे की अंगूठी, सोने की चेन ठूंस दी थी। अधिकतर राज नकली कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ही पहनती थी, उसे ले जाकर वह करता भी क्या। उसके असली गहनों का एकमात्र सेट सुपर्णा ने उसकी मृत्यु के दिन ही अपनी स्टील की अलमारी में सहेज लिया था। जानबूझकर ही उसने वह सेट वेद को नहीं दिया। देती भी क्यों, उस पर उसका अधिकार भी क्या था? रोहित के उस उपहार की अब वही वास्तविक अधिकारिणी थी। देखते ही देखते राज की 13वीं भी हो गई। रोहित ने 13 दिनों में उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। घर आता और फौजी कदम रखता, दिन भर के लिए निकल जाता। साहब और मेम साहब की शीत युद्ध की दबे स्वरों की आलोचना अब सर्पणी सी रेंगती छावनी के एक एक बंगले में पहुंच गई थी। दिन भर फड़कती कनपटी को दबाकर वह लेटी रही। फिर संध्या को विदग्ध हृदय का एक सहृदय सुझाव उसे स्वयं सहला गया। एक बार उसका स्वगत भाषण फिर मुखरित हुआ। पति के पाप का प्रायश्चित अब मुझे ही करना होगा, तभी शायद मेरे अंदर से उठ रहा यह घृणा का चिंता दाह शांत होगा। बहुत दिन बाद वह दर्पण के सम्मुख खड़ी हुई। प्रबल झंझावात के पश्चात निर्वात उज्ज्वल आकाश सा ही उज्ज्वल चेहरा सहसा स्निग्ध हो उठा। बाल ठीक किए, साड़ी बदली, फिर सेफ खोल मखमली केस को उसने बड़े यत्न से बटुए में रख लिया। धीरे से द्वार खोल वह चुपचाप बाहर निकल आई। नीम तले की पीली मस्जिद के गोल गुंबदों पर डूबते सूर्य की म्लान आभा उतर आई थी। चिकन के कुर्ते काढ़ने वाली भीड़ कच्चे फर्श पर पानी का छिड़काव कर रही थी। फटे टाट के गवाक्ष से उसने उसी विस्फोरित मुग्ध दृष्टि ने देखा। अब्बा, वही मेम साहब आई हैं जो उस दिन आई थी। वो भीतर गई। आज भी उन्हीं जीर्ण ग्रंथों से घिरा वैसे ही बैठा था, मुक्तिदाता आंखें मूंदे तपस्वी सा बैठा था। आओ बेटी, बैठो, कहो, चीज मिल गई?
जी, पर आपने सजा बहुत कड़ी दे दी।
सजा हम नहीं देते बेटा, परवरदिगार देता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है, न कम न ज्यादा। ये लीजिए। उसने केस निकालकर बूढ़े के हाथों में रख दिया। जब आपकी बेटी की शादी हो मेरी ओर से उसे पहना दीजिएगा। वार्धक्य से कांपते उन दुर्बल हाथों में डिब्बा निरंतर कांप रहा था। झुककर सुपर्णा ने डिब्बा खोल दिया और म्लान संध्या के साथ ही कमरे में उतर आए। असमय के अंधकार में नवरत्न का वह जयपुरी सेट द्विगुणित वैभव से चमक उठा। खुल रहे डिब्बे की कुतूहल माँ बेटी दोनों को ही खींच लाई थी।
या अल्लाह, हबीबा की माँ का सिकुड़ा चेहरा एकाएक उद्भासित हो उठा। ऐसे गहने तो अवध की बेगमों को ही नसीब होते थे बिन्नू। मौलवी का गला भर्रा गया। अल्लाह तुम्हें बहुत दे बेटी, बनी रहो। या मेरे मालिक, किस कदर कीमती चीज़ खोई होगी तुम्हारी जिसके मिलने पर तुम ये दौलत लुटा गई।
बिना कुछ कहे सुपर्णा आँखों आंसुओं के वेग को रोकती तीर सी बाहर निकल गई। उस दिन उन तीन दरिद्र चेहरों का मन में ना समा सकने वाला आह्लाद उसे एक क्षण को बाहों में उठाकर हवा में नचा गया, पर उसी क्षण उसे एक चौथे चेहरे की स्मृति ने फिर धरा पर पटक दिया। उसे लगा प्रवास के किसी जन शून्य अरण्य में भटक रहा राज का घायल गैंडा अपनी आहत दृष्टि से उसे देख रहा है। पहले उसके होंठ कांप रहे हैं, फिर आकारहीन चिबुक, फिर परस्पर जुड़ी अनाकर्षक घनी भौंएं, और फिर वह निष्कपट बदनुमा चेहरा रुदन की सहस्र विकृत झुर्रियों में एकदम से सिकुड़ गया है। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी कहानी गैंडा का चौथा एवं अंतिम भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।